ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी।
श्रीमद्भागवतम स्कंद चार अध्याय 30 श्लोक संख्या 17। दिव्य वर्ष सहस्रानाम सहस्रम आहता ओजसः बहुनाम भोक्षयता भोगान वै दिव्यान च अनुग्रहात् मम। दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्षयता भोगान् वै भौमान् भोक्षयत भोगान् वै भौमान् भोक्षयत भोगान् वै दिव्यांश्चनुग्रहान् मम दिव्यांचनुग्रहान् मम।
स्वर्गिक वर्ष वर्ष सहस्राणाम हजारों का सहस्रम एक हजार अहता अपराजित रहकर ओजसा तुम्हारा बल भौमान इस संसार का भोक्षयता भोगोगे भोगान सुख वै निश्चय ही दिव्यान स्वर्गलोक का च भी अनुग्रहात कृपा से मम मेरी। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तब भगवान ने प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकोगे। तुम उन्हें बिना किसी बाध्य के रूप पूर्ण समर्थ रहते हुए किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10,00,000 दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। तात्पर्य, भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वह स्वर्ग लोक की काल माप है। काल माप के अनुसार परिगणित होती है। हमारे 6 मास स्वर्गलोक के 12 घंटे के तुल्य है। इस प्रकार 30 दिन ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावाश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेताम मा गृढ़ कस्यस्य धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जेताम, इस शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उल्लेखन करते हैं कि भौतिक संसार में हर एक जीव भोगना चाहता है, तो ये भोगे तो कैसे भोगें। तो इसका जो फॉर्मूला है इस श्लोक में दिया गया है कि ईशावाश्यमिदं सर्वम्, जो भी कुछ इस संसार में देखते हैं सब कुछ भगवान का है, और ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान का नहीं है, या दूसरे शब्दों में जो भी वस्तुओं को प्राप्त हो रहा है भोगने के लिए वो सब भगवान के कृपा या अनुमति के वजह से हमको प्राप्त हो रहा है और उसको हम भोग सकते हैं। लेकिन किस दृष्टिकोण से, जो अपने लिए ज़रूरी है उसको अपने पास रखना है, जो अन्य चीज़ है उसको तेन त्यक्ति है ना, उस भावना से देखना है। तो इस संसार में स्वाभाविक जीव भोगना चाहता है, तो इस श्लोक में ऐसा वर्णन है कि किस प्रकार भगवान प्रचेताओं के ऊपर अनुग्रह करते हुए उनको भोग प्रदान किया, वो भी कितना लंबा वर्ष तक, लाखों वर्ष, 10 लाख वर्ष। और ये 10 लाख वर्ष कहाँ का वर्ष है, स्वर्ग का गणना के हिसाब से। ये जो भोगने की जो प्रवृत्ति है, ये हमेशा व्यक्ति आशा करता है कि अभी मेरे पास जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी नहीं हैं। हर व्यक्ति के पास के बाद जाके पूछेंगे वो संतुष्ट नहीं है, कितना भी उसके पास क्यों ना हो, सुविधा, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, भोग कितना भी हो, उसको उस चीज़ से कमी का महसूस होता है। आप झोपड़पट्टी में जाके पूछेंगे, उस व्यक्ति को बोलता है नहीं अभी झोपड़पट्टी नहीं, अभी थोड़ा सा मैं एक चाल में रहना चाहता हूँ, उधर मेरा लक्ष्य है कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके मैं चाल में रहूँगा। तो चाल वाले जाके पूछे नहीं 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 अभी जो है हमारे पास काफ़ी नहीं है, मैं एक फ्लैट में बिल्डिंग लेना चाहता हूँ, फ्लैट लेना चाहता हूँ, बाद में बंगला लेना चाहता है। तो हमेशा कोई व्यक्ति सोचता है जो मेरे पास उपलब्ध जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए और चाहिए। अभी भारतवासियों से पूछेंगे नहीं हम जो है अमेरिका में जाके भोगना चाहते हैं। जो लोग इस संसार के सारे भोगों को इकट्ठा करके रखे, जो वैदिक तथाकथित वैदिक नियम को पालन करते बोलते नहीं ये भोग काफ़ी नहीं, मुझे स्वर्ग का भोग चाहिए। तो हमेशा ये दोनों चीज़ें चाहता है, जो अपने पास है वो भोग भी चाहता है और साथ साथ में जो कहीं और के कहीं दूर है उसको भी भोगना चाहता है। ये भौतिकवादी का ये स्वाभाविक लक्षण है, यानी बद्ध जीव का ये लक्षण है कि आई वॉन्ट टू एन्जॉय वॉट आई हैव एज वेल एज समथिंग विच आई डोंट हैव, समबडी एल्स हैज, कहीं दूर है। तो इधर इस श्लोक में एक विशेष प्रकार का भगवान का अनुग्रह प्रचेताओं का ये है कि बोलते हैं कि भोगान, भोग सकते हो, कौन सा चीज़ भोग सकते, तो भवमान, भवमान भोगान, भवमान मतलब इस पृथ्वी के भोग, और इस पृथ्वी के भोग को भोगने के साथ साथ इसी पृथ्वी पे दिव्यांश्च, ये आखिरी लाइन में जो पहला शब्द है दिव्यान मतलब स्वर्ग का भोग, ये पृथ्वी में रहते हुए आपको ये स्वर्ग का भोग मिलेगा। ये अस्तित्व में ये भौतिक दृष्टिकोण से या साधारण कर्मों के हिसाब से वो असंभव है। आप भारत में रहते हुए अमेरिका के सुविधा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप अमेरिका का जो भोग विलास है इधर भोग नहीं सकते हो। आप कहीं एक जगह है तो दूसरा जगह का वस्तुओं को या उस प्रकार के भोगों को नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे जूह में ये प्रोजेक्ट चल रहा हैवन ऑन अर्थ, तो उसी बात को इधर भगवान प्रचेता गण को वरदान देते हैं, बोलते हैं कि भवमान भोक्षेते भोगान, वही भवमान भोक्षेते भोगान, ये भवमान मतलब इस भव संसार में अर्थ में भोक्षेते भोग सकते हो, किसको भोग सकते हो, दिव्यांश्च, दिव्यांश मतलब हेवनली एंजॉयमेंट। तो जब हमें पढ़ रहे थे श्लोक का अनुभव तुरंत हो हेवन ऑन अर्थ याद आ गया हमको कि हाउ यू कैन एन्जॉय द हेवनली एन्जॉयमेंट इवन इन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ। तो ये असंभव है असलियत में. जब तक एक भगवान का विशेष कृपा नहीं होता है तब तक ये स्वर्गीय जो आनंद है या भोग है ये इस भौतिक संसार इस भूलोक में भौमान में नहीं हो सकता है. जैसे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में प्रयास किया. एक राजा था वो सोच रहा था कि मैं स्वर्ग जाके मैं अभी भोगूंगा मैं. तब वो वशिष्ठ के पास गया तो वशिष्ठ ने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है कि स्वर्ग जाने के लिए आपको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा. ये शरीर के साथ आप नहीं जा सकते हो. ये भौतिक पंच धातुओं से शरीर जो बनाए हैं पृथ्वी का जो शरीर है वो स्वर्ग में जाके आप भोग नहीं सकते हो. तो वो जाके विश्वामित्र के पास गए तो विश्वामित्र ने बोला कि ये नहीं हो सकता. तो उन्होंने बताया उनको मालूम था ये दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है. तो उन्होंने बताया कि मैं वशिष्ठ के पास गया तो वशिष्ठ महर्षि ने तो उन्होंने बोला मना कर दिया. तो विश्वामित्र ने बोला हाँ उन्होंने मना किया तो मैं करके दिखाऊंगा. ये स्वाभाविक है. तो विश्वामित्र ने क्या किया तो अपनी सारे तपस्या का तपशक्ति को उस राजा को प्रदान किया और अपने बलबूते उन्होंने क्या किया उनको भेज दिया आप जाओ. उस राजा का नाम था त्रिशंकु. तो उस राजा को भेज दिया गया था बल शक्ति अपनी योग शक्ति के साथ. वो स्वर्गलोक ऑलमोस्ट पहुंच के जैसे स्वर्गलोक पहुंच के उधर के सारे देवता लोग घबरा गए. इंद्रदेव को बुलाए देखो इस प्रकार हो रहा है. तो ये जो प्रकृति का जो नियम है उसको इधर ये व्यक्ति तोड़ रहा है. तो तुरंत वो व्यक्ति आके इंद्र आके उनको फिर वापस भी नीचे धक्का दे दिया स्वर्ग से. वो स्वर्ग से नीचे गिर रहा था तब नीचे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे. त्रिशंकु जोर जोर से चिल्लाता है विश्वामित्र जी बचाइए मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ. तब विश्वामित्र अपनी ने बोला कि इंद्र ने मना किया तो मैं अपनी योग बल से अपना जितना तपशक्ति है उस शक्ति के द्वारा मैं और एक स्वर्ग को निर्माण करूँगा. तो उन्होंने एक और एक स्वर्ग का निर्माण किया बीच में उसको बोलते त्रिशंकु स्वर्ग. अभी वो त्रिशंकु उधर ही निवास करते हैं. तो इससे पता लगता है कि ये भौतिक बल के द्वारा इस प्रकार का भौतिक भोग या भौतिक कर्मों के द्वारा कितना भी शक्ति के द्वारा इस प्रकार का जो सुविधा हेवन ऑन अर्थ सुविधा वो प्राप्त नहीं होता है. हेवन ऑन अर्थ इवन द भौतिक भोग ही क्यों ना हो उसके लिए एक दिव्य योजना होना चाहिए. जिस प्रकार अर्जुन एक महान भक्त है तो उनको क्या हुआ वो तो ये पृथ्वी के शरीर उनको प्राप्त था लेकिन इसी शरीर के द्वारा कहाँ गए वो स्वर्ग लोग गए दिव्य लोग गए और अलग अलग प्रकार के अस्त्रों को प्राप्त किए. वो अलग अलग प्रकार के अस्त्रों को क्यों प्राप्त किए वो ताकि वो भगवान श्री कृष्ण की जो आज्ञा है दिव्य आज्ञा है उसको पालन करने के लिए उन्होंने सारे भौतिक सुविधाओं को एकत्रित किया. तो अगर देखा जाए ये जो आशीर्वाद जो भगवान ने दिया तद भले ही भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लगे ये तो ये भौतिक आशीर्वाद है पचेताओं को लेकिन इसके पीछे जो दिव्यता है उसको हमको पहचानना चाहिए. तो इस श्लोक में भोगान भोगान करके तीन बार शब्द आता है. दो बार इस बात आता है कि प्रचेताओं को भगवान ने भोग दिया और एक जगह भागवतम में हम सुनते हैं कि किस प्रकार जब भगवान का विशेष कृपा होता है तो क्या करते हैं हरिष्ये तद्धनम. सो सारा भौतिक सुविधा को ले लेते हैं करके एक जगह सुनते हैं लेकिन इधर देखते हैं कि भगवान का विशेष कृपा के द्वारा ये प्रचेताओं को जब भौतिक भोग दिया तो ये भौतिक भोग में जो दिव्यता को पहचानना ये बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में कि इस प्रकार का जो सुविधा है ये पृथ्वी पे स्वर्गीय भोग को स्वीकार करना वो भी कितने साल तक लाखों साल तक जो दैवी दिव्य या देवताओं का जो आयु है वो इस पृथ्वी में प्राप्त करना ये भी दिव्यता है. वो भी किस प्रकार का आयु इधर आहता वो जैसा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है. आहता मतलब आहता हता मतलब नाश होना आहता मतलब नाश नहीं होना ओजसा मतलब बल. जैसे ओजस के बिना हम इस संसार में भोग नहीं सकते. अगर कोई व्यक्ति भोगता है इस संसार में उसका ओजस निकल जाता है. जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण करता है तपस्या करता है ब्रह्मचर्य पालन करता है उसके अंदर विशेष तेज रहता है और उसे विशेष प्रकार का चमक उसके अंदर रहता है. क्यों है उसके अंदर ओजस रहता है. जैसे हम कोई भी आहार ग्रहण करते हैं वो आहार जो है वो खून में परिवर्तन होता है बाद में धीरे धीरे से वो करते करते वो वीर्य के रूप में बदलित होता है और ये वीर जितना व्यक्ति वो संग्रहण संकलन करके रखता है उसके अंदर उतना ओजस बढ़ जाता है उतना शक्ति बढ़ जाता है. लेकिन जैसे वो भोगता है वो ओजस खत्म हो जाता है वो दिव्यता खत्म हो जाता है. तो ये संसार में अगर व्यक्ति को ये शक्ति या बल ओजस बना के रखना है तो उसको इंद्रिय भोग से दूर रहना पड़ेगा. लेकिन इधर प्रचेताओं को एक और एक सुविधा है आप भोग भी सकते हो और साथ साथ में आहत ओजस को भी आप बना के रख सकते हो. ये तो दिव्य चीज है, ये तो स्वाभाविक प्रकृति के नियम से परे है। इसलिए ये जो भगवान ने इन भक्तों के प्रचेताओं के ऊपर एक भौतिक सुविधा या भोग उन्होंने प्रदान किया, इसके अंदर भी दिव्यता है, ये बात को हमको स्पष्ट रूप में जानना चाहिए। भक्तों को या भगवान विशेष तरीके से उनका धन भी हरण कर लेते हैं, वो भी भगवान की कृपा है, उसमें भी दिव्यता है। और साथ साथ में जब भक्तों को भगवान प्रचुर मात्रा में भौतिक सुविधा इस प्रकार जो प्रचेताओं को दिया ये देते हैं, उसके अंदर भी भगवान का हाथ है, भगवान इसका दिव्यता है, ये पहचानना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं स्वाभाविक तरीके से प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रभु जी ये जो भौतिक सुविधाएँ हैं, ये भोग है, हाँ ये भक्ति मार्ग में रुकावट है, आत्म साक्षात में रुकावट है, तो भगवान ने प्रचेताओं को ये क्यों प्रदान किया और प्रचेताओं लोग क्यों स्वीकार किए। हम तो कल क्लास में सुने कि किस प्रकार भले ही भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है, जिस उद्देश्य से तपस्या या भक्ति किया जाता है उस उद्देश्य को भगवान जरूर पूरा करते हैं। हाँ, प्रचेताओं का उद्देश्य था कि हम इस संसार में किस प्रकार प्रजनी यानी लोगों को संतान उत्पन्न करें, हाँ उनका उद्देश्य ये था। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने बताया कि देखो योग्य पत्नी है, कंडू महर्षि का जो पुत्री है, हाँ उनको पालन पोषण जो सोम राजा ने उन्होंने स्वयं किया है, तो ऐसी पुत्री से आप विवाह करो, वो जितने आपके पास सद्गुण हैं उनके पास भी ऐसे ही सद्गुण हैं, उनके जाके विवाह करो। जब हम कल क्लास में जब सुन रहे थे ये कंडू महर्षि ये तपस्या किए थे उसी जगह परशुराम क्षेत्र में, और जब हम दक्षिण भारत की भगवद गीता कोर्स करने के लिए गए थे उधर जहाँ रहते थे उस जगह का नाम है मुळियार, उधर एक कार्तिकेय मंदिर है, उसके बाजू में कंडू कुंड है, ऐसा बोला जाता है कि हजारों साल तक एक कंडू महर्षि उधर तपस्या किए तो उन्हीं के उनके बस उसके बस 100 मीटर दूर में उनका वो बंगला है जिसमें हम रहते थे कंडू कुंड तो उधर तो खैर हर एक 10 कदम निकालेंगे कोई ना कोई ऋषि आता है, उधर तपस्या किया है, सब बहुत पवित्र जगह है उधर, तो वो कंडू कुंड है उधर, तो उनके ही पुत्री से आप जाके विवाह करो। इस पुत्री का एड्रेस भी दिया उन्होंने कि आप जाके इनसे विवाह करो। तो ये जो भौतिक सुविधा है, अगर भक्ति में भक्ति मार्ग में प्रगति के लिए ये रुकावट है तो भगवान ने प्रचेताओं को क्यों दिया ये, ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये है कि भगवान जब भौतिक सुविधा प्रदान करते भक्तों को, अगर भक्त उसको ठीक तरीके से समझता है, उसके अंदर दिव्यता को समझता है, वो कभी रुकावट नहीं हो सकता है। ऑपुलेंस इज नॉट ए हिंडरेंस इन द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस व्हेन इट इज सीन इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। जब सही दृष्टिकोण से देखा जाता है या जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, ये भौतिक सुविधाएँ भौतिक भोग भक्ति मार्ग में रुकावट नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये बहुत अमीर है इसलिए अच्छा भक्त नहीं है, हाँ ये बहुत गलत धारणा, ये गरीब है तो अच्छा भक्त है, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि एक भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से पहचान नहीं सकते। अमीरी और गरीबी क्या है, ये जो शारीरिक स्तर पे है ये भौतिक स्तर पे है, तो भौतिक दृष्टिकोण से अरे ये अमीर है तो ये भक्त नहीं है, इसके पास बहुत सारे सुविधा है तो भक्ति क्या करेगा, ये सोचना गलत बात है। इसका उदाहरण हमको कहाँ से मिलता है, हाँ मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित, हाँ उन दोनों का जो पुंडरीक विद्यानी के साथ जो जो उनका भेंट हुआ उससे हमको ये बोध मिलता है। तो मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित दोनों मुकुंद इनसे पुंडरीक विद्यानी जी से मिलने गए। जब मिलने के लिए गए तो उधर मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को बोलते हैं मैं एक महान वैष्णव से मिलाता हूँ तुमको, हाँ और नवद्वीप में आए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त है और वो कृष्ण प्रेम उनके अंदर उबलता रहता है हमेशा। तो मुकुंद दत्त तो गदाधर पंडित गए, जैसे गदाधर पंडित गए मुकुंद दत्त के साथ तो उन्होंने देखा पुंडरीक विद्यानिधि वो एक सुंदर सा सोने का पलंग के ऊपर बैठे है और ऐसा सुंदर गद्दी है और सिल्क से बना हुआ हर चीज़ है और सोने की बड़ा प्याले रखे हुए और दो सेवक और सेविका उन्होंने क्या करे वो उनको मोरपंख चला रहे हैं और उनका बाल अलग अलग सुगंधित तेलों के द्वारा सज्जित है, हाँ और चंदन और सुगंधित तेल के द्वारा बहुत सारे अलंकार किया हुआ है। जैसे एक टिपिकल भौतिकवादी जिस प्रकार दिखाई पड़ता है उसी प्रकार वो दिखाई पड़ रहे थे। अस्तित्व में ऐसा बोला जाता है उनके अंदर इतना सुंदरता, इतना वैभव, उतना ऐश्वर्य बल रहा था। क्यों बल रहा था? क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त है। लेकिन साधारणतः व्यक्ति कोई जाके देखता है इस परिस्थिति को, वो पान भी छपा रहे थे और बार बार एक सुंदर जो एक आईना था, दो आईने रखे हुए थे, वो बार बार उनको देख रहे थे और अपना जो होंठ जो लाल हो गया था जो पान छपाते छपाते उसको देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो गदाधर पंडित उनको देख के उनके मन में विचार आया, अरे ये कैसे भक्त कैसे हो सकता है, ये हाउ कैन बी ए डिवोटी। तो मुकुंदत समझ गए कि ये गदाधर पंडित के मन में ये पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति कुछ अपराध युक्त विचार आ रहा है। तो तुरंत मुकुंदत ने क्या किया, एक श्लोक उच्चारण किया। भागवत का एक बहुत जो सुंदर श्लोक है, अहो बकियाम सनकालकूटम, जैसे बताया जाता है कि किस प्रकार अहो बकियाम जो बका बकासुर का जो बहन है, जैसे श्री राधा गिरिधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, बकासुर का बहन है पूतना। पूतना किसके लिए आई भगवान श्री कृष्ण के पास? वो आई उनको जहर पिलाने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण ने पूतना को एक माँ का स्थान दिया, धात्री का स्थान दिया। अगर मारने के लिए कोई व्यक्ति आता है जिसके पास और जहर पिलाने के उद्देश्य से आता है, जब उस व्यक्ति को धात्री का स्थान दिया, अब देखिए जो श्रद्धा से आता है उसका क्या स्थान मिलेगा। और जिसको भक्ति भाव से करता है सेवा, थोड़ा बहुत भी सेवा करता है, उसका क्या स्थान होगा। और ये देखो यशोदा का क्या स्थान हो सकता है जो प्रेम के साथ वो स्तनपान करा रही है कृष्ण का। तो जैसे उन्होंने श्लोक सुना, कृष्ण का जो औदार्य का जो गुण है, मैग्नानिमिटी का जो गुण है, इस प्रकार सुना, तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि उस भाव विभोर हो गए, सारे अष्ट सात्विक विकार उन्होंने उत्पन्न हो गया और जितने भी बर्तन बाजू बाजू में रखे सब तोड़ फोड़ दिए, लोट पोट हो रहे थे नीचे गिर के। तब गदाधर पंडित को समझ में आता है कि अस्तित्व में जैसे उन्होंने कृष्ण का एक लीला औदार्य के बारे में सुना, उनके अंदर कृष्ण के प्रति रति है वो बाहर प्रकट हुआ। तो असलियत में एक भक्त का वास्तविक पहचान उनकी बहिरंगिक जो परिस्थिति है उसके द्वारा नहीं करना चाहिए। अरे ये देखो इतने सारे सुविधाओं को लेके साथ साथ में चलता है, ये देखो अपने साथ बहुत सारे अनुयायी को लेके चलता है, ये देखो भक्त होने के बाद भी ऐसे ऐसा ऐश्वर्य को साथ में लेता है, सोना उसको साथ में लेता है, तो इस दृष्टिकोण से हमको देखना नहीं चाहिए। अब देखिए राजा प्रताप रुद्र, वो राजा है लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा उनको रथ यात्रा के समय मिला। क्या उसके बाद कृपा मिलने के बाद राजा प्रताप रुद्र जब सिंहासन में बैठते थे वो क्या वैष्णव का धोती कुर्ता पहन के बैठते थे? नहीं, राजा का वेश में बैठते थे। तो इसलिए हम भौतिक दृष्टिकोण से भक्तों का दर्शन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उपदेशामृत में क्या बताया गया, न प्रकृत्यम यह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्बसम नकल बुडबुड फेण पंखैर ब्रह्म ध्वतम अपगच्छति नीर धर्मैहि। न प्राकृत, ये प्राकृत दृष्टिकोण से, ये प्राकृत आंखों के द्वारा भक्तों का दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए। ये देखो ये काणा भक्त है, ये इस प्रकार का है। तो अस्तित्व में भक्तों का दर्शन किस रूप में करना चाहिए, वो उनका जो भगवान के साथ कितना प्रेम भक्ति उत्पन्न हुआ है इस दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि हाउ मच लव ही हैज गॉट फॉर कृष्णा, दैट इज द ओनली मेजरमेंट ऑफ डिवोशन। ये कितना, अरे ये तो बहुत अच्छा भक्त है क्योंकि सुंदर गाता है, अगर सुंदर नहीं गाता है तो उसका गला में खांसी कुछ हो जाता है तो वो सुंदर भक्त नहीं है, नहीं। तो ये भौतिक क्षमता के अनुसार, भौतिक मापदंड के द्वार आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक जो प्रगति उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। यू कैन नॉट मेजर वंस प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस बाय वंस मेटीरियल एबिलिटीज या मेटीरियल एसेट्स। तो ये क्या है, कौन सा है मापदंड, कृष्णा कितना कृष्ण प्रेम उदल रहा है। और ये भी नहीं कि वो एक व्यक्ति का जो वैराग्य वो भी भक्ति का मापदंड नहीं है, तथाकथित वैराग्य। इस प्रकार एक रामानुजाचार्य का वो कहानी हम बार बार बताते हैं उनके इसमें, एक गृहस्थ शिष्य रामानुजाचार्य के बहुत अमीर थे, उनको राजा को प्रसन्न, राजा के जो मंत्री या सेनापति थे उनको राजा के द्वारा बहुत सारा भेंट मिलता था, उनको बहुत अमीरी थी, उनको सोना भरा हुआ पड़ा रहता था उनके घर में। तो वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, और कुछ सन्यासी शिष्य थे, असली तो रामानुज विचार के 8,000 सन्यासी शिष्य थे, 8,000 सन्यासी डिसाइपल्स, और उन्होंने देखा कि इनके सन्यासियों में घमंड आ गया है, तो शिक्षा देना चाहते थे सन्यासियों को। रामानुज विचार ने क्या किया, तो एक दिन कुछ ब्रह्मचारियों को बुलाया, बुला के बोला कि आप जाओ सन्यास आश्रम में, आप जाके रात को ये सन्यासियों का जो कॉपिन है, हाँ, एक का कॉपिन लेके कहीं और रखो, दूसरे का कॉपी लेके कहीं और रखो, इस प्रकार खाली स्थान बदली करो। तो कुछ शिष्यों को भेजा, आप इस गृहस्थ के घर में जाओ, जाके क्या करो, आप चोरी करके आना। तो ये गृहस्थ के घर में ये लोग गए, और ये ब्रह्मचारी लोग उधर सन्यास आश्रम में जाके कॉपिन वोपिन बदली करके आ गए। ये गृहस्थ आश्रम में कुछ लोग गए और गृहस्थ के घर में, उन्होंने देखा कि घर में वो मालिक नहीं है, घर का मालिक, और देखा कि उनकी पत्नी सोई हुई है। उनकी पत्नी जब सोई हुई रहती है, उसी समय उनका इतना सारा आभूषण पहन के सो रही है, देखिए जब सजा के बाहर आती तो बहुत सारा आभूषण होंगे। तो चुपचाप गए, जाके सोचा कि हम चोरी कर लेते हैं, तो एक एक गहना, अलग अलग प्रकार के गहने सब निकालने लगे। तो उनकी पत्नी को मालूम पड़ा कि रामानुजाचार्य के जो शिष्य ब्रह्मचारी लोग हमारे घर में आए और चोरी कर रहे, इसका मतलब जरूर आश्रम में कुछ तकलीफ है, तभी तो इस प्रकार कर रहे वो लोग। तो उन्होंने सोचा कि इन सबको ये गहने सब लेने दो, क्योंकि मैं ऐसा नाटक करूँगी कि मैं सो रही हूँ। तो सोने का नाटक किया उन्होंने, और ब्रह्मचारी शिष्य लोग सब लोग गहने निकाला। तो पत्नी ने सोचा कि शायद जो आधा जो शरीर का जो गहने उन्होंने निकाला है, ये शायद कम हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वो धीरे से वो उनका करवट बदली किया, ताकि दूसरे ओर के जो गहने भी वो भी चुरा के जाए। तो जैसे ब्रह्मचारियों को मालूम पड़ा कि करवट बदल रही है, उनको मालूम पड़ा ये जग जाएगी करके वो भाग गए, लेकिन घर के बाहर खिड़की से वो देख रहे थे। तो उसी समय उनके पति भी आया अंदर, दरवाज़ा खटकाया, जब दरवाज़ा खटखटा के उन्होंने दरवाज़ा जैसे खोला, तो ये पत्नी आई दरवाज़ा खोलने के लिए, तो पति ने देखा क्या हो गया तुमको, ये आधा सजावट क्या है, ये आधा शरीर में गहने और आधा शरीर में गहने नहीं है। तो पत्नी ने सब बताया, देखो आश्रम से कुछ ब्रह्मचारी लोग आए थे ये गहने वगैरह चुराने के लिए, तो इस प्रकार वो गहने चुरा लिए, तो मैं करवट बदली ताकि दूसरा भाग भी वो ले ले। तो पति बहुत गुस्सा हो गया, किस प्रकार की तुम पत्नी हो, हाँ क्या इतना भी जरा भी गुरु भक्ति नहीं है तुम्हारे पास, तुमने इस प्रकार करवट क्यों बदली किया, ताकि उनको पता लगे, हाँ तो तुमने बड़ा बड़ा गलती की, अपराध किया, इस प्रकार पति पत्नी को डांटने लगा। तो ये बात सब ब्रह्मचारी से सुन रहे थे और वापस गए। तो अगला दिन भागवतम क्लास हुआ ब्रह्मचारी दे बाद में, तो बताया, बुलाए ब्रह्मचारियों को और बोला कि अभी क्या देखा तुम सन्यास आश्रम में। तो ब्रह्मचारी लोग बताए कि हम सन्यास आश्रम में गए, इस प्रकार कॉपिन बदली गई, सुबह उधर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। तो एक सन्यास दूसरे बोलते नहीं नहीं ये मेरा कॉपी नहीं, इसका मेरा को, तुमने वो क्यों चुराया, इसका क्यों चुराया, बड़ा हल्ला हो गया था, ये मेरा है, ये कॉपिन के प्रति आ सकती है। लेकिन बाद में ये गृहस्थ के घर में जो गए थे ये रामानुजाचार्य के शिष्य, वो ब्रह्मचारी, वो बताए क्या हुआ बताओ। तो ये बताया कि हम घर गए थे, तुमने इस प्रकार की घटना देखा, हमने चुराया, तो ये जो पति है उनको पत्नी को डांटने लगा कि वो चुरा के जब जा रहे थे तुमने इस प्रकार महसूस क्यों दिलाएगी, ताकि तुम उनको डर लग जाए, उनको दूसरा भाग भी चुराना चाहिए था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग आचार्य वो अलग अपने अपने उदाहरणों के द्वारा बताते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक चीज़ों का वास्तविक उपयोग क्या है, वास्तविक उपयोग भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते थे कि आप तो सन्यासी हो, मैंने सुना आपको बहुत सारे गाड़ियां हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वाई नॉट, आई एम द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे भौतिक चीज़ों में सबसे प्रगति किया हुआ है, उस देश का मैं गुरु हूँ, एक रोल्स रॉयस क्या है, मेरे पास हजारों होना चाहिए, हाँ वाई टिन, आई शुड हैव ए गोल्डन कार। एक कन्वर्जेशन है एक, उस पर इंटरव्यू में प्रभुपाद जी बोलते हैं वाई आई शुड हैव ए टिन कार, आई शुड हैव ए गोल्डन कार। और बाद में कुछ लोग बैठे थे सिडनी में बैठे थे कहीं और था, तो उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी कार्स वी हैव, बताए प्रभुपाद वी गॉट अराउंड 80 व्हीकल्स। तो बोलता है यस सी नोट इट डाउन, वी हैव गॉट 80 व्हीकल्स ऐसा। तो उनकी उनके जीवन में हम देखते हैं प्रभुपाद जी कि किस प्रकार उन्होंने ये भौतिक सुविधा को भगवान की सेवा में शुद्ध रूप में इस्तेमाल किया, और ये भौतिक सुविधा कभी भी उनका आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कभी रुकावट नहीं पहुंचा। हाँ, और दूसरे शब्दों में ये भौतिक सुविधा है या नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये कुछ एक प्रकार सहयोग भी है, एक प्रकार सहयोग नहीं भी है। अगर बराबर दृष्टिकोण से देखा जाए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए सुविधा है या नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई ये बंधन नहीं है, भौतिक चीज़ है। देर इज़ नो मेटीरियल सिचुएशन विच इज़ एक्चुअली ए हिंडरेंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे कुछ दिन पहले हमको एक गृहस्थ भक्त, हमारे कांग्रेगेशन के भक्त ने बताया, रोजी अभी तो आश्रम बन गया, अभी आप अच्छा भजन कर सकते हो। तो हमने बताया कि क्या 8 साल से हम भजन नहीं कर रहे थे? भजन करने के लिए सुविधा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूर प्रचार करने के लिए सुविधा की आवश्यकता है। असित में जो सुविधा है, भौतिक सुविधा, हाँ, भक्तों को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ये सुविधा मेरे लिए नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के लिए है। एनी मटेरियल थिंग, चाहे वो कॉपिन क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा बंगला क्यों ना हो, गाड़ी क्यों ना हो, इतना सारा ऐश्वर्य धन क्यों ना हो, ये असलियत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। तभी इसी बात को युक्त वैराग्य के रूप में प्रणीत करते हैं। वो वैराग्य जो कृष्ण के साथ संबंधित नहीं है, वो वैराग्य कुछ काम का नहीं है। वो ऐश्वर्य जो भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित है, वो भक्त लोग स्वीकार करते हैं। तो ये फल्गु वैराग्य, ये हमको त्याग करना चाहिए। प्रापंचकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुवि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथियते। और इसके साथ और एक श्लोक बताते हैं, नेक्स्ट श्लोक, अनासक्त स विषयान यथार्थ उपयुंजतः निर्बंधन कृष्ण संबंधे। वो निर्बंधन कृष्ण संबंधे ये महत्वपूर्ण है, निर्बंधन कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते, युक्त वैराग्यमुच्यते। तो श्री रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक को लिखते हुए ये कृष्ण भावना का पूरा सिद्धांत का सार 2 शब्दों में लिखते हैं। क्या है वो? युक्त वैराग्य। खाली युक्त नहीं, खाली वैराग्य नहीं, क्या है वो? युक्त वैराग्य। एंगेज एवरीथिंग इन कृष्ण सर्विस। ये सर्विस क्या है? भगवान की सेवा। अलग अलग लोगों की अलग अलग सेवा है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सेवा है, तो उस सेवा के अनुसार उनको सुविधा दिया जाता है। तो इसलिए हमको दूसरे भक्तों की जो तथाकथित जो सुविधा मिलता है, हाँ, या मिला हुआ है, वो अस्तित्व में भगवान की कृपा से मिला है उनकी सेवा के लिए। तो उनको देख के हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, देखो अरे इनको गाड़ी मिला मुझे नहीं मिला, इनको ऐसा मिला मुझे नहीं है, तो ये सोचना अस्तित्व मूर्खता है। अस्तित्व सुविधा किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए है। तो अलग अलग सेवा है, तो अलग अलग सेवा के हिसाब से उनको सुविधा है। राजा तो राजा जैसा सेवा करेगा, एक झाड़ू मारने वाला झाड़ू में मारने वाला जैसा सेवा करेगा, तो उसको तो मुकुट वगैरह पहन के या कुछ ड्राइविंग तो नहीं कर सकता है, ड्राइवर ड्राइविंग का सेवा करेगा। तो जो भी भौतिक सुविधा मिला है, ये जानना चाहिए भगवान की कृपा से मिला है, और उसको संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा, खास करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामृत संघ, भगवान की सेवा मतलब एक ही चीज़, प्रचार। चाहे अर्थविग्रह का सेवा हो, चाहे प्रसाद बनाने का सेवा हो, चाहे चरणामृत बांटने का सेवा हो, एवरीथिंग इज प्रीचिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस कान में हर एक सेवा का मूल उद्देश्य क्या है? गिव वन मोर पर्सन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, तो इस बात को हमारे मन में धारण करते हुए हर एक वस्तु को ये इस दृष्टिकोण से देखते हुए कि ये भगवान का कृपा से मुझे मिला है, और इसको भगवान को वापस लौटाऊंगा, उनकी सेवा में लगाऊंगा, नियोजित करूंगा, ये दृष्टिकोण से हमको देखना चाहिए। तो हमने आज ये 2 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा किया। एक जो है कि ये जो भौतिक भोग जो प्रचेताओं को मिला है, उसके पीछे एक दैवी योजना है, क्योंकि इस प्रकार का जो भौतिक भोग है, ये कहीं हो नहीं सकता। दूसरी बात हमने चर्चा किया कि हमको ये भौतिक चीज़ों को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ये भगवान का अनुमति से मिला है मुझे, और उनके अनुग्रह से मिला है, और उनको मैं प्रचार के लिए इस्तेमाल करूँगा, और मेरी भजन के लिए एक जपमाला काफ़ी है। फॉर माई सेल्फ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? 1 जपमाला इज़ रिक्वायर्ड, और 1 भगवद्गीता। बस भगवद्गीता भागवत रखो, जपमाला रखो, और क्या चले? और क्या चले? क्या पेड़ की कमी है? पेड़ की कमी नहीं है, जैसे भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन है। क्या नदियाँ सूख गया है क्या? हाँ, क्या जब हाथ है तो तकिया की यार जरूरत है? तो मेरे लिए ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रचार के लिए जरूरत है। जैसे श्री प्रभुपाद जी मायापुर में थे तो बोले थे आप तो साधु है, इतना बड़ा बिल्डिंग कौन बन रहे। तो प्रभुपाद जी हमेशा छड़ी लेके घूमते थे और छड़ी को एकदम रखे रखे बोले कि आई विल स्टे इन ए हट बट यू विल नॉट स्टे हियर, यू विल नॉट कम हियर इफ आई डोंट क्रिएट द फैसिलिटी। मैं तो एक कुटिया में रहूंगा। प्रभुपाद जी जब भी वो मायापुर जाते थे, मायापुर में जो हट है, माया प्रभुपाद हट, यूज टू स्टे देयर। जैसे जू में प्रभुपाद क्वार्टर्स है, लेकिन मायापुर में प्रभुपाद क्वार्टर्स नहीं है। ऑब्जर्व इट, दिस प्रभुपाद क्वार्टर्स इज दैट हट। मायापुर जाते थे इट इज माई होम, आई विल स्टे इन द हट। हाँ, तो ये भावना था। तो इस प्रकार हमको ये भौतिक सुविधाओं को हमेशा इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये भगवान का कृपा है से मिला है और इसको भगवान की सेवा में नियोजित करूँगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें सीखे। और भी कुछ बातें हमने सीखे कि भक्तों को हम भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये अमीर है तो भक्त नहीं है, ये गरीब है ये भक्त नहीं है, अरे ये तो गाड़ी में घूमता है तो एक कौन सा भक्ति कर रहा है, पैदल जाना चाहिए, तो इस प्रकार सोचना न प्राकृत्वम यह भक्त जन से प्रश्येत। और ये भी देखना कि ये सुविधा जो दूसरों को मिल रहा है ये भगवान के ऊपर से मिल रहा है ये जानना चाहिए, बल्कि अरे ये तो पोजिशन में ये सारा सुविधा अपने लिए हड़प रहा है, तो इस प्रकार सोचना भी एक ईर्ष्या की भावना है। हम इस प्रकार सोचने से भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सेवा के लिए सुविधा चाहिए, उन सुविधा जो है वो भगवान ने प्रदान किया है। ये जानना चाहिए हर भक्त को, जो हमको जो भी सुविधा मिल रहा है वो भगवान के अनुमति से, उनके अनुग्रह से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है ये समझना चाहिए कि ये जो है भगवान की इच्छा है, इसलिए हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि भगवान उतना ही देते हैं जितना हम संभाल सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक वक्त बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी वी शुड हैव दिस बिल्डिंग फॉर द टेम्पल। प्रभुपाद जी उनको देखे, कृष्णा इज विलिंग टू गिव यू द होल न्यूयॉर्क, पूरा न्यूयॉर्क आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम संभाल पाओगे? प्रॉब्लम ये है। तो हमारे पास नहीं है करके रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्तित्व में हमारे पास अब उस वस्तु प्राप्त करने के बाद संभालने की योग्यता नहीं है, अगर है तो भगवान ज़रूर देंगे। हाँ, तो इसलिए प्रभु ये बोलते हैं, राधानंद महाराज एक लेक्चर बता रहे थे कि इफ़ यू यूज एवरी इंच ऑफ द टेम्पल इन कृष्णा सर्विस, कृष्णा विल गिव यू मोर प्लेस। तो इस बात को हमने इस मंदिर में पिछले 8 साल के साक्षात्कार किया कि बार बार हम प्रयास कर रहे थे कि आश्रम बने, 6-7 साल हो गए क्यों नहीं बन रहा था। लोग अलग अलग कारण निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण एक ही था, क्योंकि अभी जो सुविधा है उसको पूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे पूरा आश्रम के सभी रूम ब्रह्मचर्यों से भर गया तो भगवान ने और रूम्स दे दिया, तो वैसे ही नया मंदिर भी नहीं बन रहा है, बहुत सारे कारण ढूंढ रहे, लेकिन उसका एकमात्र कारण है अगर ये जो मंदिर का जो प्रांगण है, ये भी सुविधा है, वो पूरा भर जाता है, यानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो स्वयं तरीके से भगवान बड़ा जगह देंगे। तो इसलिए हमको इस दृष्टिकोण से इतना अटल कृष्ण कॉन्शियस प्रचार कृष्ण भावना भावित होकर प्रचार करेंगे, तो ये मूल सिद्धांत कृष्ण भावना के मूल सिद्धांतों को हमारे हृदय में धारण करते हुए प्रचार करेंगे तो स्वाभाविक तरीके से जिस प्रकार प्रचेताओं को ये भौतिक ऐश्वर्य भगवान की कृपा से मिला है, तो ये बड़ा अद्भुत मंदिर हो जो भी है वो सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो हमारे मन में जो भी बातें स्पॉन्टेनियसली आए वही बताए, तो कोई विशेष तैयारी हमने नहीं किया था, अगर कुछ टूटियाँ हो तो माफ़ कीजिए। हरे कृष्णा। कोई भगवान के लिए एक भक्त को दान देता है और वह भक्त उसको मिसयूज़ करता है तो उसको क्या रिएक्शन होगा? इसको बहुत भयानक रिएक्शन होगा। ये केवल पाप ही नहीं बल्कि बहुत अपराध है। अपराध पाप से बढ़कर है। ये पाप जो है उसका क्षय हो सकता है, ठीक है, अगर कोई चोरी कर लिया तो उसको दंड मिलेगा, क्षय हो जाएगा, लेकिन अपराध क्योंकि भगवान का पैसा है तो उनको अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई लगाता है तो उसको ज़रूर उसका फल मिलता है। वो अलग अलग स्तर के लोगों का अलग अलग प्रकार का रिजल्ट्स मिलता है, लेकिन ज़रूर उसका होगा, शास्त्रों में इसका उल्लेखन होगा, हमने तो पढ़ा नहीं, लेकिन एक जगह हम सुन रहे थे कि भक्तिनाथ ठाकुर का कहानी में एक बार भक्तिनाथ ठाकुर वो जा रहे थे एक जगह से, कुछ भूत प्रेत नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे या हरे कृष्ण सुनाई पड़ रहा था, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको वो लोग आके उनको भक्तिनाथ ठाकुर प्रसाद दिया, वो जो है मांस का प्रसाद था, तो भक्तिनोद ठाकुर बाद में देखे कौन है इस प्रकार हमको प्रसाद दिया लेकिन वो मांस है कौन है, तो उन्होंने सोचा कि ये जो है ये पिछले जन्म में वो महंत के रूप में थे और मंदिर का जो धन है उसको गलत इस्तेमाल किया तो उनको इस प्रकार का भूत का शरीर प्राप्त हुआ तो ये घटना। और एक है फेमस कहानी है, हम जानते हैं कि कुत्ता का कहानी है वो उसको पिछले जन्म में महंत था तो वो कुत्ता बन गया, तो उस व्यक्ति को वो एक पुजारी था उन्होंने कुत्ते को मारा तो भगवान ने क्या किया उनको आशीर्वाद दिया, क्या तुम अगले जन्म में अभी तुम महंत बन जाना, प्रमोशन मिल गया। तो अरे बोले कि क्यों भाई प्रमोशन कैसे मिल गया, तो पहले जन्म में कुत्ता जो है, कुत्ता बोला पहले जन्म में महंत था मैं इसलिए गलत इस्तेमाल किया अभी कुत्ता बन। तो ये दो हमने सुना है लेकिन शास्त्रोक्त अगर कोई श्लोक है तो आप गुड़ाकेश्वर कुंदाश्रु से पूछ सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आपके लिए है, नहीं भगवान ठीक है आपके लिए। एक तो ये है ये उनकी भावना है, उनकी सद्भावना है कि क्योंकि शास्त्र बोलता है भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उनकी भावना व्यक्त कर रहे हैं। भक्त को कैसे, ये तो भक्त को ये सोचना चाहिए ये उनकी भावना है, ये भावुक है तो, और मैं स्वीकार नहीं करूँगा तो उनका हृदय टूट जाएगा, हृदय टूट जाएगा तो फिर वो भक्ति मार्ग में रुकावट होगा तो प्रचार बंद हो जाएगा, तो ये प्रचार के उद्देश्य से हम स्वीकार करते हैं। कभी कभी लोग हमारे हमको घरों में निमंत्रण देते हैं प्रसाद के लिए वगैरह, तो असद में हृदय से हमको जाने का मन नहीं करता, अरे कौन आएगा, एक तो उधर जाओ टाइमिंग अलग हो जाता है, अगला दिन पेट खराब हो जाता है सब कुछ ना, लेकिन अभी वी हैव टू गो, वाई, क्योंकि हमारा प्रचार का केंद्र है, वी हैव टू प्रीच, वो जाएंगे उनको कृष्ण कथा सुनाएंगे तब उनकी भक्ति में प्रगति होता है। तो इस दृष्टिकोण से निर्बंध ना कृष्ण संबंधे निर्बंधित होके वी हैव टू एक्सेप्ट इट, यू एक्सेप्ट इट नो प्रॉब्लम, यू एक्सेप्ट इट एंड यूज इट इन कृष्ण सर्विस। जैसे कुछ लोग दान देते हैं, हम बोलेंगे रिसिप्ट बुक बनाएंगे, हम नाम बताए, बोलते राम भरोसे उधर खास करके रथ यात्रा जन्माष्टमी के टाइम में जब हम घर घर जाके मांगते हैं, खास करके गुजराती लोग हैं डायमंड मार्केट में एक बार गए थे तो वो एक व्यक्ति 100 रुपये दिया, मैं बोला कि रिसिप्ट बनाना है, मतलब राम भरोसे लिखो बहुत सारे हैं, कम से कम 25-30 ऐसा लोग मिले जो राम भरोसे अभी क्या करेगा तो हमको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कम्प्लीटली डिटैच्ड। हाँ चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास ग्रहण किए, क्यों ग्रहण किए, या संन्यास इज ऑल्सो अपिलेंस, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि वो समय में उनको आदर नहीं देते थे वो लोग, क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में है तो स्वाभाविक तरीके से जैसे एक गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है, भले ही उनका कृष्ण प्रेम उबल भी रहा क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से उनका गृहस्थ होने के नाते स्वाभाविक तरीके से लोग उनको आदर नहीं देते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे ये भी तो मेरे जैसा है तो भले वो कृष्ण कथा शुद्ध रूप में मतलब बहुत अच्छे भक्त है लेकिन क्योंकि लोगों का बुद्धि मंद है तो वो प्राकृतम वो प्राकृत दृष्टि से वो उस व्यक्ति को देखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब शुरुआत में आते हैं लोग कृष्ण भावना के साथ, हाँ वो ब्रह्मचारियों को सुना जाते हैं, ब्रह्मचारियों को देख के आते, सन्यासियों को देख के आकृष्ट होते, बाद में पता लगता है देखो ये ऐसा है, इससे भी बढ़कर अच्छे ग्रस्त भक्त लोग हैं, उनसे उनका भी संग करना चाहिए, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। सो इट इज़ लाइक दैट, सो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, तो इसलिए ये भाग भी ध्यान में रखना चाहिए। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम, बहुत सारे अशेष मंडली मंडल को बहुत सारे बड़े बड़े राजा के स्तर में थे, षड गोस्वामीगण राजा के स्तर में थे, उन्होंने त्याग किया, त्याग तो किया महत्वपूर्ण है लेकिन उसके उससे अधिक महत्वपूर्ण दूसरा लाइन है षड गोस्वामी अष्टक, किसके लिए वो त्याग किए, भूतवादीन गणेश को करुणया, भूतवादीन गणेश को करुणा, लोगों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए उन्होंने त्याग किया। सो दैट इज टू एक्सेप्ट यह हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज संन्यास। संन्यास मतलब क्या है, हायर ऊपर की जिम्मेदारी को अपनाने के लिए लो नीचे की स्तर की जिम्मेदारियों को त्याग करना। वो क्या है ऊपर की स्तर की जिम्मेदारी, लोगों को कृष्ण भावना का शिक्षा प्रदान करना। और श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कारण क्या है, शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणा, शिक्षा प्रदान करना। वो शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया, क्योंकि स्वाभाविक तरीके से लोग प्रणाम करेंगे, भले ही शिक्षा ग्रहण में नहीं किए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और सन्यासी को देख के अभी भी इवन उस जमाने भी चाहे वो नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो वो प्रणाम करता है, और प्रणाम किसको कर रहा है, भगवान को कर रहा है, तो उसको भक्ति का आवेश हो गया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु इस दृष्टिकोण से संन्यास ग्रहण किया को हम याद किए जब महाराज जब शुरुआत में जब आया था एक साल जैसे कि कमल लोचन नाउ यू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, तब मैं भी ऐसे ही पछताया था क्यों भाई मैं इधर आया सारा पदवी सब कुछ सारा सब किताब खोल के आराम से भागवत वगैरह अध्ययन करो कुछ प्रसाद को एक कोने में सो जाओ, इस प्रकार जीवन बिताने के लिए आए, ये क्या है व्हाट इज दिस। तो ध्रुव महाराज का घटना हमको याद आया, तो ये पछताना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड भक्ति दृष्टिकोण से, क्योंकि जब भगवान जो वास्तविक संपत्ति हमारे सामने है, तो जब भगवान नीचे की जो भौतिक संपत्ति हमको दे रहे तो लगता है कि अरे मुझे तो वो चाहिए, इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है, तो भक्त को पछता होता है, ये उनकी भावना है, ये उनकी चेतना है, इसी चेतना के साथ हमको जीवन यापन करना चाहिए। दिस इज इंस्ट्रक्शन ध्रुव महाराज हम दे रहे, उनकी कहानी से हमको क्या प्रकट करते हैं कि जब कोई भौतिक सुविधा मिलता है हाँ हमको एक तरीके से पछताना चाहिए, असलियत में मुझे भगवान चाहिए, ये सब थोड़ी ना चाहिए, लेकिन मिल गया तो क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे हाँ, क्योंकि अगर मैं ठुकरा दूंगा तो वो माया की सेवा में लग जाएगा। तो इसलिए अगर ध्रुव महाराज नाराज नहीं बनते, वो त्याग कर देते, कोई और राजा बनता, लोग भक्त नहीं बनते। और भगवान श्री कृष्ण उपदेश क्यों दिया, अर्जुन तुम राजा बनो ताकि तुम्हारे राज्य में सब लोग कृष्ण भक्त बनेंगे, उनका मत ही कृष्ण में रहेगा, मेरे में रहेगा। दुर्योधन तो बहुत अच्छा राजा था, तो इसलिए फॉर इट इज अ डिवाइन अरेंजमेंट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। नहीं पछता है वो, अच्छा प्रचार भक्ति किया, प्रचार किया और भगवत धाम गए, देवर गुड देवर नाइस, आशीर्वाद मिला ना। ये अभी अगले श्लोक में मिलता है कि आप हजारों लाखों साल तक भक्ति करते हुए जीवन यापन करो और बाद में भगवत धाम वापस आ जाओगे, तो ये आशीर्वाद है ना। इधर टुडे और टुमारो एक टिकट मिल गया तो आप